मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 25 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आतंकवाद पर कानून, इस विषय पर बात करूंगा। और इनफैक्ट सच पूछे तो इसके माध्यम से मैं जो आपका टॉपिक है मेंस का सुरक्षा सिक्योरिटी, उस पर कुछ बातें करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले आइए हम कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। अभी कुछ दूसरी हमारे पास महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक बात मैं आप सबसे स्पेशली कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जब पार्लियामेंट के सत्र चल रहे हैं, अभी पार्लियामेंट हमारा चल रहा है, आपको थोड़ा सा विशेष रूप से सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर डिबेट होती है, बहसें होती हैं, बहुत से नए एक्ट पारित किए, अधिनियम पारित किए जाते हैं और बहुत से हमारे जो पुराने एक्ट हैं उनमें संशोधन किया जाता है। तो ठीक है, अगर अभी आप डेली बेसिस पर सतर्क नहीं रहेंगे तो इन बातों की जानकारी आपको मैगजीन से मिल जाएगी, लेकिन मैगजीन में आप उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। जब आप चैनल पर बहस को देखते हैं, चैनल में आप देखते हैं कि इस एक्ट को हेडलाइन के रूप में लाया गया है, अखबारों ने इसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से छापा है, इस पर एडिटोरियल कमेंट आए हैं, इस पर एडिटोरियल आर्टिकल्स आए हैं, तो इसी से ही आपको अंदाजा लग जाता है कि नहीं नहीं, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और ये एक्ट आपको दोनों स्टेजेस पर मदद पहुंचाते हैं, प्री एग्जामिनेशन में भी और मेन एग्जामिनेशन में भी, इसलिए इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखें। जैसे आप देखिए कि अभी पार्लियामेंट चल रही है हमारी और इस पार्लियामेंट में कितने सारे एक्ट पारित किए जा रहे हैं, उनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण एक्ट हैं मैं उधर आप लोगों का ध्यान दिला रहा हूं। और याद रखिए कि ऐसा नहीं कि जितने भी एक्ट पारित हो रहे हैं आप सबको महत्वपूर्ण मान लें, फिर तो आप अपने पास गार्बेज इकट्ठा कर लेंगे, मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। जो महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उन्हीं एक्ट पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, या सरकार के जो वक्तव्य हैं उन पर ध्यान देना है। और अगर आप सरकार के वक्तव्यों पर ध्यान देने लगेंगे तो मेन एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सिलेक्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, कल आप टीवी चैनल पर अगर देख रहे होंगे तो हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। आप देख रहे हैं ना कि कश्मीर के मामले को लेकर के किस तरह से अमेरिका ने एक शिगुफा छोड़ दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि आप हमारे बीच मतलब एक तरह से मध्यस्थता का काम कीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। फिर अमेरिका ने अपने ढंग से सफाई दी, हमारे पार्लियामेंट में भी इसको लेकर के काफी विपक्ष आलोचना कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, सरकार बहुत क्लियरली कह चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन चलिए राजनीति अपनी जगह है। तो हमारे गृहमंत्री जी ने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया और वो ये दिया कि पाकिस्तान से जो बात होगी ना वो केवल कश्मीर पर नहीं होगी, पीओके पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भी बात होगी। और कितनी जोर डाल करके उन्होंने ये बात कही है, दबाव डाल करके ये बात कही है। ये एक स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि केवल हम कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही ना इस पर बात नहीं करेंगे कि यहां शांति हो जाए, हमारा कश्मीर का जो हिस्सा आपने हथिया लिया है हम उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत वक्तव्य है। इसका मतलब है कि कश्मीर इशू पर जब भी कुछ आपको पढ़ने को मिलता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। न्यूज में आपने सुना नवाचार सूचकांक, जिसे कहा जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII। यह इंडेक्स आया है और इसमें भारत 52वें स्थान पर पहुंच गया, 52nd, पिछले साल ये 57th पर था। और अगर आप 2015 के आंकड़े को लेंगे, यानी कि जब ये सरकार आई थी ऑलमोस्ट, उस समय हम 81st पर थे, 81वें पर थे और अब हम 52वें पर आ गए हैं। देखिए, जो इनोवेशन सूचकांक है, जो प्री एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है, केवल मैं उसके तहत आपको कुछ बातें रख रहा हूं। पहला तो यह है कि ये जो GII है इसको 3 लोग मिल करके जारी करते हैं, तैयार करते हैं। पहला तो यह कॉर्नेट यूनिवर्सिटी, आपको मालूम होना चाहिए कि प्री में इस तरह के एग्जाम पूछ लिया जाता है। दूसरा यह है INSEAD, इसका फुल फॉर्म मैं नहीं देख पाया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये तीनों मिलकर इसे तैयार करते हैं, राइट। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यह है कि इसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है, इंडेक्स जो निकालते हैं तो उसमें तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपने बौद्धिक संपदा के लिए कितने केसेस दायर किए हैं, कि भाई इसको रजिस्टर्ड किया जाए, उसकी संख्या कितना है, किसी देश ने कितने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए हैं, शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है, किसी देश ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर कितने प्रकाशन किए हैं, यानी लेख वगैरह प्रकाशन किए हैं। तो इस तरीके के संकेतों को लेकर के वो ये इंडेक्स तैयार करते हैं, और ये भारत के लिए एक खुशी की बात है कि धीरे धीरे लगातार इसमें भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आपको मालूम है कि भारत में बकायदे नवाचार के लिए विशेष कोशिशें की जा रही हैं, और ये आपके मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। दोस्तों, एक एडिटोरियल कमेंट है, और इसका हिंदी वर्जन मैंने कल आप लोगों को प्रोवाइड किया था, आज मैं इकोनॉमिक टाइम्स का इंग्लिश वर्जन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपकी ये बहुत मदद करेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक कानून पारित किया है, और उस कानून के अनुसार आंध्र प्रदेश में अगर कोई भी उद्योग लगाता है या उद्योग लगा चुका है और अब नौकरी देगा, तो उसको अपने 70% जो वैकेंसीज हैं वो अपने ही स्टेट के लोगों से भरनी पड़ेंगी, लोकल लोगों से ही भरनी पड़ेंगी, यानी 75% रिजर्वेशन हो गया लोकल लोगों के लिए। इसकी बहुत जबरदस्त रूप से आलोचना हो रही है और होगी, और मुझे नहीं लगता है कि आंध्र प्रदेश सरकार इसको रोक पाएगी, मतलब रोक पाएगी यानी कि इस कानून को कंटिन्यू कर पाएगी। क्योंकि देखिए, जहां ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है वहां आप लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और वैसे भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी शायद हो, तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ होगा। और अगर मान लीजिए कि ये एग्जिस्ट करता है, तो आप सोच करके देखिए कि हम इनोवेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम $3 trillion की अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ी करना चाहते हैं, इसका कितना निगेटिव इम्पैक्ट होगा। मतलब आपको आंध्र प्रदेश में अगर कोई फैक्ट्री खोलनी होगी तो मान के चलना होगा भैया कि नहीं नहीं आप दूसरी जगह से टैलेंट नहीं ला सकते, आपको 75% तो वहीं का टैलेंट लेना पड़ेगा। तो कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इसके लिए समझौता करने को तैयार नहीं होगा। देखते हैं कि अब इस पर और आगे क्या होता है। मित्रों, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और वो है आतंकवाद पर कानून, और इनफैक्ट इसके माध्यम से मैं जो सुरक्षा का टॉपिक है उस पर आपसे कुछ बातें करूंगा, नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा आपका टॉपिक है, ये जनरल स्टडीज का जो थर्ड पेपर है उसमें जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें एक है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें 5-6 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं, यानी कि इसका सिलेबस बहुत कम है। यदि मैं इस नेशनल सिक्योरिटी को तैयार कराने के लिए लेक्चर देना चाहूं आपको, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं 15 आवर्स लूंगा, केवल 15 घंटे, और 15 घंटे में इस टॉपिक की पूरी तैयारी बहुत अच्छे से करा दूंगा। मजेदार बात यह है कि आप लगा 15 घंटे रहे सुनने में, 15 घंटे लगा रहे हैं, लेकिन इससे मेंस का जो थर्ड पेपर है उसमें आपको 20 में से मिनिमम 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 20 में से 3 क्वेश्चन, कल्पना करके देखिए। और आपने टाइम कितना इन्वेस्ट किया है, केवल 15 आवर्स सुनने में। तो दोस्तों, पहली बात यह कि नेशनल सिक्योरिटी पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और इसकी तैयारी के लिए यहां एक चुनौती जरूर है कि आपको बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट किस मायने में, देखिए, एक अवैध गतिविधि कानून था जो 1967 का बना हुआ कानून था, है ना, कल वो पारित हुआ है, भी लोकसभा से पारित हुआ है, राज्यसभा से भी हो ही जाएगा, जितने बहुमत से लोकसभा से पारित हुआ है, इसलिए मैं उसकी चर्चा अभी कर रहा हूं। अब वो जो अवैध गतिविधि रोकथाम जो विधेयक था, अब उसमें संशोधन हो रहा है, तो अब ये हो गया अवैध गतिविधि रोकथाम इन ब्रैकेट संशोधन विधेयक 2019। अब इस विधेयक में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। अभी तक उस विधेयक के तहत जो हमारी एनआईए है या जो सरकार है कह लीजिए, किसी संगठन को ही आतंकवादी घोषित कर सकती थी, और हमारे गृह मंत्री जी ने बकायदे संसद में बयान देते हुए ये बताया है कि जो हमारी एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने इंडियन मुजाहिदीन को आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन यासिल भटकल को आतंकी घोषित करने के लिए कोई कानून नहीं था। यानी कि संगठन को तो आप आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, व्यक्ति को नहीं, तो आप भटकल को नहीं कर सके। और बाद में फिर इसी व्यक्ति ने इसी का फायदा उठा करके 12 गतिविधियों को अंजाम दिया, 12 वारदातें की कहना होगा। तो महसूस किया गया कि नहीं, व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जाना चाहिए और इस कानून ने यही सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी आतंकी घटना को अंजाम देगा या अंजाम देने में सहयोग करेगा या घटना की तैयारी कर रहा होगा या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होगा या किसी भी तरह से वो आतंकवादी गतिविधियों से संगठनों से जुड़ा हुआ पाया जाएगा तो बकायदे उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, पहला व्यक्ति को आतंकित घोषित करना और दूसरा उसकी संपत्ति को जब्त कर लेना। और जब संपत्ति को जब्त करने की बात आएगी तो उसके लिए राज्य सरकारों से पूछा नहीं जाएगा और इस काम को अंजाम देगी जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वह यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो अधिकार हैं वो इसके तहत काफी बढ़ा दिए गए हैं। मित्रों, अब आप देखिए कि ये तो एक हिस्सा हो गया, 20 सितंबर के आसपास शायद एग्जाम होने हैं तो अब तो इतना समय नहीं रह गया है कि इस टॉपिक को 20 सितंबर 21 के एग्जाम में शामिल किया जाए, लेकिन अगले साल शामिल किया जा सकता है। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो विरोधी पक्ष उठा रहा है। पहला तो विरोधी पक्ष कह रहा है कि ये हमारा जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि राज्य की अपनी स्वायत्तता है, केंद्र की स्वायत्तता है, तो आप राज्यों से नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा यह कि व्यक्ति को आतंकित घोषित, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर आप आंच पैदा कर रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं, इसका सहारा लेकर के सरकार किसी के भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर सकती है, तबाह कर सकती है। और तीसरा यह कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में भी कर सकती है, क्योंकि आतंकी घोषित करने के लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया तो यहां है नहीं, तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये तीन संदेह वो अपने पक्ष में उठा रही है। ठीक है, ये तीनों बहुत वैलिड भी हैं, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और सरकार अपने ढंग से जवाब दे भी रही है, संदेह व्यक्त कर रहे हैं, और संदेह कितने सही हैं कितने गलत हैं ये बात अलग है। तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको इन तीनों संदेहों का या तो निराकरण करना होगा या इनके पक्ष में हां मिलाना होगा। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है कि अभी इस पर देखिएगा, आप एडिटोरियल कमेंट आएंगे, बकायदे एडिटोरियल आर्टिकल आएंगे, वहां से आपको बकायदे पॉइंट्स मिल जाएंगे और अगर आप उन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो यूं कह लीजिए कि एग्जाम में आने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। उसमें से दो प्रश्नों के मैं उत्तर देना चाहूंगा। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जो कीवर्ड होते हैं, जो पुछल्ले होते हैं ना, कि व्याख्या कीजिए और समीक्षात्मक आलोचना कीजिए, सो पुछल्ले शब्द हिंदी में चल गया है, इसका अर्थ भी आप बताइए। मैं बहुत क्लियर कर दूं कि एक तो मेरी जो आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग एक किताब है, उसमें बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है। जहां तक YouTube का सवाल है, मैंने जानबूझ करके इस पर कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है क्योंकि जो दिव्य कीर्ति जी हैं उनका YouTube पर इस टॉपिक पर बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑलरेडी उसमें डला हुआ है। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये पर्याप्त है और अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, विस्तार के साथ समझाया है, तो उसी बात को मैं भी कहूं तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो मेरी किताब से भी आप देख सकते हैं लिखित रूप में अगर आपको अपने पास चाहिए तो, या फिर आप YouTube पे उनका प्रोग्राम देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे डेवलप करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, निहायत ही जरूरी है। सिविल सर्वेंट अगर आपको बनना है तो, और बनने के बाद अगर आपको काम करना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो आपको चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड दोस्तों आप केवल विचार करके कर सकते हैं। जब आप मुद्दे उठाएंगे, अपने दिमाग में कोई प्रश्न खड़ा करेंगे और कुछ उन प्रश्नों पर के बारे में सोचेंगे और सोचने के बाद उत्तर निकालेंगे, देखिए यह क्वालिटी है, एक गुण है, है ना, ये मैकेनिकल नहीं है, ये गुण है, क्षमता है कि उसका दिमाग बहुत तेजी के साथ किसी चीज के बारे में सोच लेता है। और इनफैक्ट जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसका पूरा पैटर्न ही इस बात को लेकर के है कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। तो और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है सोचने विचारने की क्षमता से धीरे 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 विकसित होती चली जाती है। तो दोस्तों, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं रोहित पाटीदार बदनावर मध्य प्रदेश से, आनंद कुमार औरंगाबाद बिहार से, गुरुदेव वर्मा मोहम्मद वासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, नेहा यादव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, शिवानी सिंह और गौतम शर्मा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।